So welcome to Anurag Mahendra Sharma podcast. This is episode 55 of the podcast and the guest today is Bhanwar Meghwanshi. Bhanwar Meghwanshi is a socio-political activist and an author. He has been part of Ambedkarite movement in Rajasthan for many years and have been working on ground to highlight the atrocities committed on Dalits and also to build a sense of community among Dalits to help them progress socially, mentally and economically. His recent book was I Could Not Be a Hindu, The Story of a Dalit in the RSS. In this podcast, we try to understand why Rajasthan remains one of the most caste-ridden society and still untouchability is practiced in many regions. Many of you might have read the news that a 9-year-old boy in Rajasthan from Dalit community was killed by a teacher for touching a water pot that was meant for the oppressor caste. Few months back, there was a news of Jitendra Meghwal, a Dalit man killed for sporting the mustache and wearing the stylish clothes. So these incidents sadly are very common in Rajasthan, especially in Western Rajasthan. The atrocity in Rajasthan are specifically high against Meghwal community. Me and Bhanwar Meghwanshi both belong to same Meghwal community and unfortunately have a good experience of seeing the reality of caste in this state very closely. So this podcast might be an important conversation to understand Rajasthan from first-hand perspective, which is different than the average touristy view that we often see in the mass media. So before I start the podcast, I request you to support it on Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal or Instamojo. I don't have funding for this podcast and it is entirely dependent on the support of its listener. I also recorded the video of the guest for this particular episode, which is only exclusively available on Patreon at the moment. It is a very small and basic recording right now and maybe called a small start to move the podcast into a visual format. If I get enough fund from the listeners in the future, then I plan to record the video podcast with better equipments and lights. For that, support of my listeners is required, so please do support the podcast generously. All the links are available in the description box. And now let's start the episode number 55 of Anurag Mahendra Sharma podcast. So, sir, सबसे पहले स्वागत है आपका पॉडकास्ट में. मेरा पहला सवाल यह है कि राजस्थान की जो छवि ज्यादातर लोग जानते हैं उसकी मेमोरी डेवलप हुई है फिल्मों से या गानों से या फिर इंस्टाग्राम की रील से जहाँ चौकीडानी में खाना खाने के बाद टूरिस्ट नाच रहे हैं कलाकारों के साथ काले कूद पड़े हो गाने पे. तो इस तरह की एक जॉयफुल पीसफुल एक ब्यूटीफुल राज्य की छवि उभर के नज़र आती है जहाँ पे बहुत सुंदर हवेलियाँ हैं, फोर्ट्स हैं, लेक्स हैं और एक बहुत ही कलरफुल और शांत और बहुत ही इंजॉयबल लाइफस्टाइल है. लेकिन आप और मैं राजस्थान में रह चुके हैं और इस सोसाइटी का जो ज़बरदस्त कास्ट इक्वेशन है उसको हम झेल चुके हैं जहाँ पर हर कास्ट एक दूसरी कास्ट के साथ ऑलमोस्ट वॉर पे रहती है. तो इस दूसरे राजस्थान की क्या रियलिटी है जो कि मास मीडिया में अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है?
बहुत शुक्रिया अनुराग जी. ये जो जैसे ही राजस्थान आप कहते हैं तो लोगों को एक छवि दिखाई गई कि रेगिस्तान है और ऊंट चल रहे हैं और फिर पृष्ठभूमि से गीत आता है केसरिया बालम पधारो मारे देश. मैं कई बार सोचता हूं कि आप पूरी दुनिया को इस देश में आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन इसी आपके देश या प्रदेश में हम हैं और जिन्हें आपने आज दिन तक ये फीलिंग ही नहीं आने दी कि ये हमारा गांव है, हमारी धरती है या हमारा इलाका है. तो कला संस्कृति के नाम पर, गीत के नाम पर और स्थापत्य के नाम पर जो कुछ आप परोस रहे हैं या इतिहास के नाम पर भी आप जो परोस रहे हैं वहां हम कहां हैं, ये एक सवाल है. आप महाराणा प्रताप की वीरता की बात करते हैं और वो हमारे लिए भी वंदनीय है लेकिन उनके साथ लड़े भील योद्धाओं की इतिहास किधर है? आप जब बिजोलिया के किसान आंदोलन की बात करते हैं तो वहां जो नानक भील शहीद हो गए थे उनकी कहां चर्चा आप करते हैं? तो पूरा इलाका आप अगर देखेंगे तो इन गढ़ों में, हवेलियों में अब मेहरानगढ़ के किले में म्यूजियम बना देते हैं, दुनिया देखने आती है, लेकिन उस किले की नींव में जो राजा राम मेघवाल चुना गया, उसका एक छोटा सा पत्थर वहां लगाए रखते हैं, ऐसी जगह पे जहां कोई देखता भी नहीं उसको।
अच्छा, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर वाला, वहां की क्या स्टोरी है?
तो दरअसल वो पहले ये माना जाता था कि कोई भी बांध, झील, तालाब, गढ़, किला या कोई भी ऐसी इमारत जिसको सदियों तक चलना है, उसे अगर तामीर करना है तो उसकी नींव में एक किसी इंसान की बलि देनी पड़ती थी। तो बलि किसकी ली जाएगी? मजबूत व्यक्ति की तो नहीं ली जाएगी ना, बलि तो बकरियों की ली जाती है, कोई शेर की तो बलि लेता नहीं है। तो उस समय कौन था कमजोर व्यक्ति? वही दलित था, आज का जो जिसे आप दलित अनुसूचित जाति कह रहे हैं। तो ये मेहरानगढ़ का किला भी जब स्थापित हुआ तो राजा राम का जो परिवार था मेघवाल का, उसकी बलि वहां पर राजा राम की बलि दी गई, और उसके बदले में तत्कालीन जो वहां के जो राजा थे, जोधपुर में महाराजा कहते हैं उनको, तो उस वक्त के महाराजा ने इनको जमीन भी दी उस किले के पास के इलाके। तो आप गढ़ की तामीर में नींव में राजा राम को चुनेंगे, और ऐसा नहीं था कि मार के चुनेंगे, आप जिंदा उनको उसमें चुन देते थे। अब उसको कई लोग शहादत कहते हैं, एक पक्ष वो है जो इसको हत्या भी मानता है, क्या पता उन्होंने खुशी से ये किया या ये बलिदान था या मर्डर था। लेकिन ये तो सच्चाई है, इतिहास में आता है कि भाई उनका ये हुआ। पुष्कर सरोवर की जो नींव हुई उसमें भी माँ जोगचंद की नाम के एक मेघवाल की उसमें भी बलि दी गई, पिछोला की झील में दी गई। तो आपका इतिहास कंगूरों का इतिहास है और हमारा इतिहास नींव का पत्थरों का इतिहास है। आपका इतिहास मूछों को दिखाने का है और हमारा इतिहास मूछ रखने पर मर्डर हो जाने का इतिहास है। तो स्थितियां जितना दिखाया जा रहा है राजस्थान को वैसा नहीं है, वो थोड़े से लोगों का राजस्थान है जो पर्यटन विभाग बेच रहा है। बाकी राजस्थान को अगर आपको देखना है, आप घुसिए उन रेतीले टीलों के किसी भी ढाणी में और वहां के दलित की जिंदगी देखिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए मार डाले जा रहे हैं, पानी की मटकी छूने की वजह से विद्यार्थी मारे जा रहे हैं, अच्छा खाना खा लें तो मारे जा रहे हैं, कोई अपने नाम के बीच में मिडिल नेम सिंह लगा दे तो लोग मारे जा रहे हैं, मूछ रख ले तो मारे जा रहे हैं, कोई अंतरजातीय विवाह कर ले, प्रेम कर ले तो मारे जा रहे हैं। तो हालत यह है कि दलित तो प्रेम कर रहा है, बदले में उसे नफरत मिल रही है। और आज भी अगर आप देखेंगे देश भर का अगर क्राइम डाटा, तो तीसरे नंबर पे राजस्थान है दलितों के खिलाफ एट्रोसिटी, दलित महिलाओं के खिलाफ जो यौन शोषण है उनके मामलों में तो यह आंकड़ा और ज्यादा आपको दिखाई देता है। लैंडलेसनेस भयानक है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक जितेंद्र कुमार मेघवाल को मूछ रखने के लिए मार डाला गया था, मैं उसके गांव में गया, वहां 250 दलित परिवार रहते हैं। हमने उनसे पूछा कि 250 परिवार हैं आपके, उसके बावजूद ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब हकीकत पता की तो पता चला कि 250 में से महज 6 परिवारों के पास जमीन है, बाकी उनके पास कोई आजीविका के लिए कोई जमीन नहीं है। तो वो उन्हीं अत्याचार करने वाले लोगों के खेतों में काम करते हैं। तो आप अगर निर्भर हैं किसी से, आपकी जिंदगी, आपका पेट किसी और से भरता है और उनसे भरता है जो आपके साथ बर्बर अत्याचार करते हैं, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, तो कैसे लोग बोलेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि वो तो उन्हीं पे निर्भर है। तो एक किस्म की स्लेवरी, गुलामी आज भी आप राजस्थान में देख सकते हैं। और मैं तो ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अभी भी राजस्थान का एक हिस्सा है, खासतौर पे जो पश्चिमी राजस्थान है, जो डेजर्ट वाला इलाका है, वहां पर आप जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, झालोर, सिरोही, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में अभी भी अनटचेबिलिटी इस लेवल पे है, शायद मुझे लगता है कि वो 300 साल पहले इस देश में रही होगी। वैसे स्तर पे अभी भी कुछ कम्युनिटियां दलितों का मंगलवार के दिन चेहरा नहीं देखती, अगर सामने से दलित आ जाए तो वो कट लेंगे। तो राजस्थान एक तरीके से अभी भी सामंतवाद की उस गुलामी से निकला नहीं है। और वैसे भी आप अगर देखेंगे तो राजस्थान का 1000 साल का पिछला इतिहास किसी रेजिस्टेंस के मूवमेंट का संकेत नहीं देता है। यहां पर कोई समाज सुधार का बड़ा आंदोलन नहीं चला, कोई भक्ति काल में ऐसा संत कभी नहीं आया जो, जिसे आप कहें कि ये रैदास या कबीर या चोखा मेला या उस तरह के लोग। तो केवल भौगोलिक डेजर्ट ही नहीं है, वहां एक किस्म का इंटेलेक्चुअल डेजर्ट भी है, एक किस्म के रेजिस्टेंस का भी रेगिस्तान है वहां। तो उसकी वजह से जब प्रतिरोध नहीं आया तो आप वहां की शब्दावली देखेंगे तो अंदाता हुकुम हाथ बांध करके लोग कहते हैं, और बातचीत शुरू होती है खम्मा घणी से। कई बार लोगों को लगता है कि खम्मा घणी राजस्थान का संबोधन है और अच्छी चीज होगी, लेकिन इससे ज्यादा फ्यूडलिस्टिक चीज नहीं हो सकती, क्योंकि खम्मा घणी हमारी संस्कृति नहीं है। खम्मा घणी का मतलब होता है खम्मा मतलब क्षमा, घणी मतलब बहुत, आई एम वेरी सॉरी। वो बात ही इससे शुरू करेंगे कि मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं, तो पीछे हाथ बांध करके सर नीचा करके उसके बाद भी बहुत माफी चाह करके कोई व्यक्ति बात शुरू करेगा, आप क्या सोचते हैं कि वो विरोध करेगा? तो पूरी तरीके से इस जातीय सामंती व्यवस्था के सामने वहां का आम जन दंडवत किए हुए हैं 1000 साल से। तो वहां अगर थोड़ी बहुत भी लोग खड़े होकर के रीढ़ की हड्डी को सीधा करना चाहते हैं, या उन लोगों से जिनके जिनकी कई पीढ़ियों के सामने इनके कई पीढ़ियों के पुरखों ने कभी भी हाथ आंख नहीं मिलाई, उनसे अगर कोई आंख मिलाने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि वो स्थिति बहुत असहज करती है। तो जातीय जाति जातिवाद, जातिगत भेदभाव और जातिजन्य अत्याचार, इनका गढ़ है राजस्थान। केवल गढ़ किलों का गढ़ नहीं है बल्कि जातिवाद का भी और ब्रूटल एट्रोसिटी का भी गढ़ आप राजस्थान को कह सकते हैं।
आपने इसमें बात की कि किसी भी तरह का कोई भी पावरफुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर हम देखें यूपी में वहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट हुए, या महाराष्ट्र में जहाँ पे जाति को लेके एक मूवमेंट्स का लंबा इतिहास रहा है, तो राजस्थान में ऐसा कोई भी मूवमेंट अब तक क्यों नहीं हो सका?
ये हिंदी पट्टी जिसको लोग गोबर पट्टी कहते हैं, तो इस गोबर पट्टी की जड़ता है। दरअसल कभी कभी भाषा भी आपको गुलाम बनाती है, तो ये हिंदी क्षेत्र की जड़ता जो है वो राजस्थान में भी है, और राजस्थान के अलावा इस इलाके में भी आपको दिखेगी। महाराष्ट्र में अलग किस्म का प्रतिरोध है और वो वहाँ निरंतर रहा है। आज भी जो आपको दलित चेतना दिखती है, वो दलित चेतना अंततः उसका उद्गम स्थल तो महाराष्ट्र है, वहीं फुले भी होते हैं, वहीं राजर्षि साहू महाराज भी होते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी वहाँ पैदा होते हैं, सावित्रीबाई भी वहाँ होती है। तो राजस्थान में तो बड़ा विद्रोह का नाम देखते हैं तो विद्रोहिणी मीरा है, और मीराबाई तो मीराबाई ने जो भक्ति साहित्य रचा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उसको लोग मानते हैं कि वो सबसे बड़ा प्रतिरोध था।
मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रतिरोध था?
क्योंकि वो एक स्त्री थी और राजमहलों से निकल करके उसने सड़क पर या गली मोहल्लों में जाने का साहस किया, या रैदास को अपना गुरु बनाने का साहस किया जो उस समय दलित थे, ऐसी जो मान्यता है उसको लोग मानते हैं कि ये बहुत बड़ा विद्रोह है। नहीं तो विद्रोह की कोई धारा आपको नजर आती नहीं है, शायद वहां की मिट्टी में ऐसा रहा होगा लंबे समय तक। और जहां राजशाही रही है, जहां क्योंकि राजस्थान तो राजे महाराजाओं का जगह है, कोई भी सत्ता अपनी प्रजा को कभी भी मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि वो मजबूर रहे, वो सर झुका के रहे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले के जमाने में नंगे सर निकलने की इजाजत नहीं थी। आप अगर 12-13 साल के हो जाते हैं तो आपको सर पर साफा बांधना पड़ता है और वो साफा आपकी जाति के अनुरूप बांधना पड़ता है, ताकि आपको दूर से देखें कोई तो आपका सर्टिफिकेट देखने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि तब तो ना तो आधार कार्ड होता था, ना कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता था, तो कैसे पूछते, कैसे जानते कि आने वाला कौन है? तो वो वेशभूषा से पहचानते थे। और वो साफा नंगे सर रहना भी उनको लगता था कि ये भी बगावत है। तो केवल सर को ऊपर से ही नहीं बांधा उन्होंने, वो इतने भीतर तक बांध लिया कि वो पूरी मानसिक जड़ता और गुलामी इस क्षेत्र में आपको नजर आती।
थोड़ी देर पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे कि दलितों के खिलाफ तो उत्पीड़न है ही राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में हर जाति दूसरी जाति से लड़ती हुई नजर आती है। जैसे मीणा वर्सेस गुजर होता है वहाँ पे, या जाट राजपूतों से लड़ते हैं, राजपूत जाट से लड़ते हैं। तो इस तरह का ये जो कास्ट का एक मिनी एवेंजर्स जो चला हुआ है राजस्थान के अंदर, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है।
तो आप अगर जातियों को देखेंगे तो ये जो जातियाँ हैं ये कबीलों जैसा व्यवहार करती है, और अभी भी वो अपना अपना कबीला जो है वो दूसरे के खिलाफ लड़ता हुआ आपको लगता है। और ये अब तो बिल्कुल सामने आ गया है। आप कितना ही ढको, कहो कि भाईचारा था, सौहार्द था, सदियों से बना हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था। मुझे लगता है कि जब से सोशल मीडिया का उभार हुआ है, तब से आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि आप चीजों को पॉलिश्ड करके बाहर दे सके। अभी चीजें जैसी है वैसी बाहर आ रही है, तो अंदर जितनी भी नफरत है वो हर समूह की नफरत बाहर आ रही है। अपनी अपनी जाति के जो पेजेस बने हुए हैं उस पे जाति की सेनाएं बनी हुई है। देखिए, जाति के मोहल्ले हैं, जाति के गांव हैं, जाति के घाट हैं। आप पुष्कर में जाइए, चाहे हरिद्वार में जाइए या गया में जाइए, हर जगह आपको हर जाति का एक घाट मिलेगा। जाति के मंदिर हैं, और जब मर जाते हैं तो जाति के शमशान हैं। और आजकल जाति की अपनी सेनाएं हैं और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जाति का। तो वो जो जाति पंचायतें हैं, जिनको आप खाप पंचायतें कहते हैं, वो जाति पंचायतों को ये पावर है कि वो फैसले करें। एक तरफ देश में संविधान है, न्यायपालिका है, एक तरफ पैरेलल पूरी समानांतर अदालतें चल रही है।
अच्छा, राजस्थान में भी खाप पंचायत है?
बिल्कुल, राजस्थान, हरियाणा, इस इलाके में आप देखते हैं, इवन मेरठ वाला ये पूरा जो इलाका।
लेकिन पंचायतों का काम क्या होता है? प्रशासन पे दबाव डालना?
नहीं, प्रशासन तो दूसरी बात है। सबसे पहले तो वो ये निर्णय करते हैं कि वहां की जो औरतें हैं उन स्त्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। दरअसल जाति जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो औरत की यौनिकता को मैनेज नियंत्रित करने का एक सिस्टम है। जाति का सबसे पहला रोल क्या है? सगाई करना, सजातीय विवाह करना। लड़की अगर विजातीय जगह पर प्रेम करके चली गई तो उसको बुला करके और पेड़ पे मार के लटका देना। और जब जाति में ही शादियां होती है तब भी वो उसके नेग और बाकी चीजों के नाम पे उसकी रेट तय करते हैं। कई इलाकों में राजस्थान में नाता प्रथा है। एक तो होता है जो आप अरेंज्ड होता है उसको रिश्ता कहते हैं, लेकिन रिश्ता के बाद एक नाता होता है। वो नाता वो होता है जो स्त्री अपनी मर्जी से जोड़ लेती किसी के साथ। तो नाता प्रथा में भी जाति का रोल है।
नाता मतलब लव मैरिज?
नहीं, आपने मान लिया शादी कर ली, शादी करने के बाद आप
को नहीं जचता है कि ये पति मेरे मुझे नहीं जचेगा या ये पत्नी नहीं जचेगी। तो मुख्यतः स्त्रियां दूसरा पति चुन लेती है अपने पति की जीत, मतलब वो तलाक का एक तरीका है। तलाक कर मतलब घर छोड़ के चले जाना, जिस पति से शादी हुई उसको छोड़ना और उसको छोड़ करके दूसरा पति अपनी मर्जी का चुन लेना। तो जब ये होता है तो फिर खाप पंचायत का रोल आ जाता है उसमें, तो वो एक पनिशमेंट देती है उसके नए पति को और वो लाखों में होता है।
अच्छा।
तो आप सोचिए कि ये क्या चल रहा है, आप फैसले कर रहे हैं और आप आर्थिक दंड दे रहे हैं। यही तो सरकार करती है ना, यही तो कोर्ट करती है कि भाई आपको 5 साल की सजा और अगर आपने ये नहीं तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना। तो एक तरफ एक लोकतंत्र ऊपर ऊपर का इस देश में है, लेकिन ये केवल राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र आया नहीं है। सामाजिक रूप से अभी भी अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, वही व्यवस्था है जो सदियों से चली आ रही है। और उसका उसकी वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित स्त्रियां हैं और उससे थोड़ा कम पीड़ित दलित हैं,
पुरुष।
तो जाति का पूरा ही मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। फिर जो ये जातीय सेनाएं बनी हैं, ये संविधानेतर सत्ताएं हैं। मान लिया कि फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई, तो होना ये चाहिए कि सेंसर बोर्ड बना हुआ है आपके देश में, वो देखेगा फिल्म को और वो पास करेगा। लेकिन यहां पास कौन कर रहा है? सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, उसके बावजूद भी कौन पास कर रहा है? करनी सेना पास करती। फिर और कोई, अगर आप जाटों पे बनाएंगे तो तेजा सेना पास करेगी, गुजरों पे बनाएंगे तो देव सेना पास करेगी, दलितों पे बनाएंगे तो दलित सेना पास करेगी। हर जाति की अपनी सेना है और ये सेनाएं इस हद तक काम करती है कि अगर भारत की एक्चुअल सेना से लड़ना पड़े तो ये आमने सामने हो जाती है। आपने हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में जब जाट आरक्षण का आंदोलन चला तो इंडियन आर्मी के सामने, पुलिस फोर्स के सामने उनकी जो सेना थी जात की वो खड़ी हो गई। जातीय सेना ये उखाड़ देती है आपकी रेल की पटरियां। यानी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में जातीय सेना को कोई कष्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जाति जो है वो राष्ट्र से ऊपर की चीज है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि अभी जब पाकिस्तान में ये इमरान खान की जो सरकार पिछली बार आई, तो ये चुनाव होकर के जैसे ही निपटे तो मुझे मेरे एक मित्र ने व्हाट्सएप पर एक पोस्टर भेजा और उसने लिखा कि 30 गुजर सांसद बनने पर बधाई हो। तो मैंने उनको लिखा, पाकिस्तान में बड़ी संख्या में गुजर रहते हैं भाई, मैंने तो पहली बार सुना। तो पर मैंने कहा यार इनके नाम तो सारे मुसलमानों के नाम है इसमें। तो उसका कमेंट वापस आया, उन्होंने कहा मुसलमान है तो क्या हुआ, गुजर तो है। तो आप देखिए कि जाति जो है वो सरहद पर आपकी जो सेना खड़ी है उसको पार करके पाकिस्तान पहुंच जाती है और आपकी धर्म की जितनी भी दीवार है उसको भी गिरा के पहुंच जाती है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाट हैं ना, आप सिख जाट हैं चाहे जट सिख हैं तो चलेगा, आप मलिक वाले मुस्लिम सिख जाट हैं तो चलेगा और हिंदू जाट हैं तो भी चलेगा, हिंदू गुजर हैं तो चलेगा, मुस्लिम गुजर हैं तो चलेगा। तो ये जो जातियों का पूरा मामला है ये राष्ट्र से ऊपर है, ये धर्म से ऊपर है और मैं मानता हूं कि ये इंसानियत से भी बहुत ऊपर है।
तो वैसे इंटरेस्टिंग है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कुछ जाट पे जिस देख रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन जाट हैं, और एक गुजर पेज देख रहा था वहां पे बोल रहे थे कि सद्दाम हुसैन भी गुजर हैं।
नहीं, और ये देखिए ये तो दो पर्टिकुलर हमने जातियों के नाम लिए लेकिन ये हर जाति में है, ठीक है ना। तो अगर राजस्थान का मेघवाल है, जोधपुर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का, श्रीगंगानगर का और बीकानेर का, तो सरहद पार जो उसका मेघवाल है
पाकिस्तान
का, वो उससे ज्यादा दोस्ती महसूस करता है बजाय कि आपसे दोस्ती करने। तो ये तो ये है।
मैं क्वेश्चन ये आता है कि जाति जो है अगर लोग जाति को राष्ट्र से भी ऊपर मानते हैं, धर्म से भी ऊपर मानते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आरएसएस किस तरह से एक पैन हिंदू आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ हद तक सफल भी हुआ है, स्पेशली इस रीजन के अंदर?
वो डर की सियासत है। उसे मालूम है आरएसएस को कि जाति के सवाल को नहीं छेड़ना है। 97 ईयर का सफर है आरएसएस का, अभी 2025 में वो 100 साल के हो जाएंगे। किसी का भी 100 साल हमारे गांव में पूरा हो जाता तो हम ये मानते हैं कि उसको श्रद्धांजलि देने का वक्त हो गया। तो ये तो अब सबसे ये जवान हो रहा है, यौवन पे है पूरा। तो आरएसएस ने कभी जाति के सवाल पे छुआछूत पर बात नहीं करी, कभी जाति मिटाने की बात नहीं करी। जाति को उन्होंने हिंदुओं की विशिष्टता मानी। बंच ऑफ थॉट में श्री गुरु गोलवलकर लिखते हैं कि जाति हमारा वैशिष्ट है और जाति को वो अपना विशेष गुण मानते हैं। तो आरएसएस को मालूम है कि जाति के प्रश्न पर हम एक नहीं कर सकते इनको, तो किस पे एक कर सकते हैं? उन्होंने एक डर दिखा रखा है मुसलमान का, और वो एक जो काल्पनिक भय है मुसलमान का, उसके नाम पर वो सबको एक करने में लगा हुआ। और जब आप बाहर कोई दुश्मन ढूंढ लेते हैं और जब उसे दिखा देते हैं, तो उसको दिखा देने के बाद में आपके इर्द गिर्द के जो दुश्मन है, आपके जो भीतर का दुश्मन है, उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस समय सबको झंडा पकड़ा दिया उन्होंने और एक दुश्मन दिखा दिया और कह दिया कि ये है तुम्हारी कारण। आपको ताजुब होगा कि आरएसएस ने 3 दलित जातियों का बड़ा बड़ा इतिहास का ग्रंथ छापे हैं।
अच्छा।
और वो ग्रंथ है हिंदू चर्मकार जाति,
अच्छा,
हिंदू खटीक जाति, हिंदू वाल्मीकि जाति के इतिहास से है। और इन तीनों किताबों के लेखक हैं विजय सोनकर शास्त्री, जो खुद दलित हैं। हाँ, और वो एससी कमीशन के चेयरपर्सन रहे, भाजपा के प्रवक्ता रहे राष्ट्रीय, और सांसद भी रहे, अभी भी बड़े नेता हैं वो। शास्त्री जी खुद खटिक जाति से आते हैं। इन तीनों किताबों में 500-500 पेज की किताब है, इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ। मोहन भागवत जी ने उसका विमोचन किया दिल्ली में, प्रभात प्रकाशन जो आरएसएस का प्रकाशन ही है लगभग, उसने उसको छापा। मैंने तीनों किताबों को पढ़ा। तीनों किताबों का मूल स्वर यह है, उसकी स्थापना यह है कि भारत में जाति तो थी आदिकाल से, लेकिन जातिगत छुआछूत नहीं था, भेदभाव नहीं था, प्रदा प्रथा नहीं थी, और दलितों के साथ इस तरह का कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं था। तो जब मुगल आए तो मुगलों ने आकर के उन्होंने यहाँ के जो हिंदू थे उनको जबरन मुसलमान बनाना शुरू किया। जो मुसलमान नहीं बना उनसे लड़ा। ऐसे धर्म योद्धा जो लोग थे उनको उन्होंने गुलाम बनाया और ऐसे कामों में लगाया कि उनको चमड़े के काम में लगा दिया, उनको मेला ढोने के काम में लगा दिया। यानी कि ये जो बीमारी है आज, जो अनक्लीन्ड ऑक्यूपेशन की वजह से जो अनटचेबिलिटी है, उसके दोषी इस देश के ब्राह्मण नहीं है, बनिया नहीं है, राजपूत नहीं है, या सो कॉल्ड सवर्ण नहीं है, बल्कि ये जो 9वीं सदी के बाद जो आए हुए मुसलमान हैं बाहर से, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो पूरी चीज स्थापित करने का काम किया, तो ये आपका पूरा डाइवर्ट कर देती है, आपकी इस परिस्थिति के लिए एक तो बरी कर देती है सवर्ण हिंदुओं को, और दूसरा आपको नए दुश्मन दे देती है। अच्छा, तुम्हारी वजह से हम ऐसे हैं, तो अब तुम्हारी वजह से अगर हम ऐसे हैं तो हमको तुमसे लड़ना है। ये तो हमारा प्राथमिक काम हो गया ना, ये बाकी सवर्ण लड़े नहीं लड़े, दलित को तो लड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको तो इस पूरी परिस्थिति में इन्होंने डाला है। तो इतिहास का जो ये विकृतिकरण है और ये जो शिफ्टिंग है दुश्मन की, कि आपकी तरफ बंदूक की नली थी, आपने बंदूक की नली दूसरी तरफ फेर दी और दलित के कंधे पे रख दी, तो ये जो पूरा चीज है आरएसएस ने करने में कामयाबी हासिल करी है, और यही है उसका हिंदुओं की एकता। नहीं तो हिंदुओं की एकता क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सारे इन हिंदुओं को पढ़नी चाहिए और आरएसएस को जरूर पढ़नी चाहिए, उसके प्रत्येक स्वयंसेवक को जाति का विनाश पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बाबा साहब ने कहा कि ये धर्म क्यों नहीं फैला पूरी दुनिया में, इसका मतलब ये कारण नहीं था कि ये कोई बहुत अच्छे सदा से ही लोग थे कि इनको धर्म वर्म फैलाना नहीं था, हालांकि इनका उद्देश्य भी कृणवंतो विश्वम आर्यम था कि पूरी दुनिया को हम आर्य बनाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं बना पाए कि आप अगर यहां से जाके किसी भी और मुल्क में किसी को हिंदू बनाते हैं तो उसको रखेंगे कौन सी जाति में। आज किसी मुसलमान को बना लीजिए, क्रिश्चियन को बना लीजिए, यहूदी को बना लीजिए, तो फिर कौन से इन चार वर्णों में और 6000 जातियों में किधर फिट करेंगे आप? आपके यहाँ तो कोई खांचा नहीं है ना जिसको फिट करो। इवन ये हालत है कि जो बन गया पहले मुसलमान या क्रिश्चियन, वो आज वापस जब आता है जिसको धर्म परावर्तन कहते हैं, घर वापसी, तो वो घर वापसी जब आता है तो वो उसी डब्बे में वापस फिट होता है जिस डब्बे से वो निकल करके गया था, उसी खाई में गिरता है या उसी कुएं में आकर के गिरता है। तो क्योंकि हिंदू शब्द हो चाहे हिंदुत्व हो, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक परिभाषा है, इसका धर्म से कोई लेन देना नहीं है। यहां तो जाति ही धर्म है, क्योंकि हमने बचपन में ये देखा गांवों में और आज भी वो है कि किसी भी यहां किसी ने छूना नहीं और आपका खाना छू लिया या पानी छू लिया तो लोग कहते मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, यानी जाति भ्रष्ट हुई। तो यहां जाति ही धर्म है, धर्म अलग से कुछ था ही नहीं। जिसको सनातन कहा गया उस सनातन में जाति ही धर्म था। अब उस जाति ही जो धर्म था उसको एक धर्म बनाया गया हिंदू नाम से, एक लेबल लाए, हिंदुत्व नाम भी इनका नहीं है। अगर ये हिंदू नाम बता दे कि इनके वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है या ब्राह्मण ग्रंथों में है, किधर है ये हिंदू? उनको तो छोड़िए, जैन ग्रंथों में दिखा दीजिए, बौद्ध ग्रंथों में दिखा दीजिए, कहीं नहीं है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द ही जिनसे आज ये लड़ रहे हैं मुसलमानों से, ये अरबों ने और तुर्कों या उन मुगलों ने ये शब्द दिया इनको, तो इनकी तो प्राइमरी पहचान ही उधार की पहचान है और उसी पे हिंदुत्व बनाया पूरा पूरा। और हिंदुत्व विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचार है, उसका धर्म वर्म से कोई लेन देना नहीं है। आप आरएसएस के लोगों को देखिए अगर, तो कोई धार्मिक लोग नहीं है, इनके प्रचारक प्रचारक कहीं नजर नहीं आएंगे आपको, ना कहीं व्रत करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना अगरबत्ती करते हैं, कुछ नहीं। इनको रोक करके कह दीजिए कि कोई चार श्लोक सुना दीजिए, शायद वो भी ना आए इनको। इनको प्रार्थना जरूर आती है, नमस्ते सदावत सले, वो तो करते हैं, लेकिन हिंदू मतलब जो सनातन धारा का जो धर्म है उससे इनका कोई लेन देना नहीं। पर चूंकि इनको एक राजसत्ता पर कब्जा करना था तो हिंदू हिंदुत्व और उसका फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से, तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है एक्चुअली ब्राह्मण राष्ट्रवाद है और ब्राह्मण सुपरमेसी के लिए है, और वो आपको नजर आ रहा है अभी इन दिनों में, अब आपको दिखने लग जाएगा थोड़े दिनों बाद में। हो सकता है कि ऐसी चीजें ध्यान में आए जब आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े शोध संस्थान बनाए जाएंगे, जब गौमूत्र पर शोध होगा उसमें सोना ढूंढा जाएगा या पता नहीं क्या क्या चीजें ढूंढी जाएगी, और ये होना शुरू हो चुका है।
एक जो हम बात कर रहे थे साथ मिलकर रेजिस्ट करने की, तो राजस्थान जैसी जगहों में कैसे कैसे संभव है जहां हर जाति एक दूसरी जाति से लड़ रही है? ऐसी की जातियों की बात करें तो उसके अंदर भी कोई इतनी खास यूनिटी नहीं है। एसटी जातियों में भी बात करें तो मीना जाति है, तो आपने देख ऑब्वियसली देखे होंगे कि राजस्थान में कई जगह पेट्रोसिटीज मीनाओं के थ्रू भी होती है। इनफैक्ट दलितों को घोड़ी पे चढ़ने से कई बार रोका भी है मीना जाति ने, जो कि एसटी में आती है। तो ये इतने जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में कम्बाइंड यूनिटी या फिर कम्बाइंड रेजिस्टेंस कैसे होगा किसी भी तरह के ऑपरेशन के खिलाफ?
तो ये जो आपने कहा है कि एक दलितों के भीतर में भी एक अंतर्द्वंद है और अंतर विभेद भी है कि वो भी एक दूसरे को नीचा भी समझते हैं और यहाँ तक कि अनटचेबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि दलितों में भी तो कोई अति दलित है और कोई महादलित है, और ये सच है, लेकिन ये केवल दलितों का सच नहीं है, ये उस जाति व्यवस्था का घृणित सच है जो उनको सिखाया गया। हर एक के कान में एक मंत्र फूंका गया कि भले ही तुम नीचे हो लेकिन तुमसे भी कोई और नीचे। तो वो जो एक समुदाय है उसे लगता है कि मेरे से नीचे चार और जातियां हैं, तो भले ही मैं 14 जातियों से नीचे हूं लेकिन मेरे से भी नीचे चार है, तो उससे उसकी आत्मसंतुष्टि हो जाती है। और ये यही ब्राह्मणवाद है, यही मनुवाद है कि आप लोगों को बिखेर दो, बांट दो, इकट्ठा मत होने दो। इस वजह से कोई भी इकट्ठा आया ही नहीं हजारों साल तक, क्योंकि आपने इतना बिखेरा सबको कि वर्ण बनाए, फिर जातियां बनाई, उपजातियां बनाई, गोत्रे बनाई, फिर उससे भी नीचे खापे बनाई, नख और सती और पता नहीं क्या 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 नीचे तक इतना ले गए कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बैठ ही नहीं पाए। और जो चालाक लोग थे, धूर्त लोग थे, साते लोग थे, वो अपना काम चलाते रहे। तो इस वजह से चाहे वो ST हो राजस्थान का, चाहे वो SC के लोग हों और OBC हो, इन सब में ये एक तरह का भेद है। लेकिन जो बाकी समुदाय हैं उनमें भी ये भेद नजर आएगा, लेकिन उनमें समझदारी है कि वो 50 तरह के ब्राह्मण होकर के भी सर्व ब्राह्मण महासभा बना लेते हैं। वो राजपूत, रावणा राजपूत और भौमिया राजपूत और किस्म के जो राजपूत, रावत राजपूत, सब मिलकर के एक ऐसी क्षत्रिय सभा बना लेते हैं या एक ऐसी करनी सेना बना लेते हैं जिसकी वजह से वो एकजुट हो जाते हैं। व्यापारियों के तो अपने अलग किस्म है, उनके तो अपने कल्ब है, कोई रोटरी बना लेता है तो कोई रोटरेट बना लेता है, कोई लॉयंस बना लेता है, उनके अपने तरीके। तो उन्होंने संगठित होने का तरीके ढूंढ लिए हैं, इन्होंने विघटित होने के तरीके ढूंढ रखे। एक्चुअली जो भी टूटा हुआ समाज होता है, उत्पीड़ित समाज होता है, वो टूटने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि सदियों सदियों तक जब आप टूटते आते हैं तो आपकी विशेषज्ञता किस में आती है? टूटने में आती है, जुड़ने में नहीं आती। तो ब्रोकन सोसाइटी जो है वो और ज्यादा टूटती जाती है। तो आज भी हालत ये है कि आप संगठित कीजिए, उस संगठित होने में जितना समय लेते हैं उसका 5% भी समय नहीं लेते हैं बिखर जाने में। तो यही जो बिखराव है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी वो समय है जहां संविधान हमको एक करता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के रूप में, और इससे भी ज्यादा आगे हमारी पीड़ाएं हमको एक करती है। हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो वंचनाएं हैं, हमारे पे जो वर्जनाएं हैं, वो हमको एक करती है और वो एक कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नहीं तो जालोर में एक छोटे से गांव जिसका पहले कभी नाम भी नहीं सुना गया लोगों ने, उस गांव का एक 9 वर्षीय बच्चा जब मारा जाता है तो पूरा राजस्थान आंदोलित होता है और जाति आंदोलित होती है दलितों की, और वहां पहुंचते हैं लोग, यहां तक कि आदिवासी मीणा समुदाय के लोग भी पहुंचते हैं और वो दलित के पक्ष में खड़े होते हैं। दूसरी तरफ वो जो संगठित खेमा है पहले से ही, सर्व समाज, दरअसल वो सवर्ण समाज है लेकिन वो सर्व समाज के खोल में आता है, और वो 36 कौम के नाम पर अपने आप को प्रस्तुत करता है कि 36 कौमें इकट्ठा हुई। मुझे कई बार लगता है 36 कौम, आज ही मैंने लोगों से कहा, मैं सुबह से ही मांग रहा हूं, कल से ही मांग रहा हूं कि 36 कौमों की लिस्ट दे दीजिए हमको, हम गिनना चाहते हैं कौन कौन है 36 कौम, लेकिन अभी कोई वो दे नहीं रहा है। तो शायद ये भी बड़ा कारण रहा कि हमारे बिखराव और हमारे संगठित नहीं होने का। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है, लोग विचार के साथ एक हो रहे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर वो सीमेंटिंग फोर्स है, वो ब्रिज है जो हमको एक करते हैं। जय भीम का वो नारा, वो नीला रंग, वो फिर आपकी सदियों की जो टूटन है, आपके जो डिफरेंस जो हैं, जो विषम असहमतियां हैं, उसके बावजूद भी यहां वो एक हो रहे हैं, क्योंकि भरतपुर में जाटो पिट रहा है ना, तो दोसा में बैरवा पिट रहा है, तो टोंक में रेगर पिट रहा है, भीलवाड़ा का कोई बलाई पिट रहा होगा, तो जालौर का मेघवाल पिट रहा है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम अलग अलग पहचान में होते हुए भी जब हम पर शोषक और उत्पीड़क जब प्रहार करता है तो वो ये नहीं देखता है कि आप अलग जाति हैं, आपका दलित होना, आपका अनुसूचित जाति होना ही पर्याप्त है, इतने मात्र से ही वो आपके साथ अन्याय और अत्याचार करने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये कारण है कि अब लोग समझ रहे हैं और साथ आ रहे हैं।
तो इस चेतना में आप सोशल मीडिया का कितना रोल मानते हैं, और क्या आप आशावादी हैं कि भविष्य में चीजें सुधरेंगी या फिर कुछ हद तक अभी भी चीजें पहले के मुकाबले सुधर रही हैं?
पहला तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। रोहित वेमुला का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में, उसके बाद बिना किसी नेता के पूरा देश खड़ा हुआ और दुनिया खड़ी हुई, वो किसी संगठन का कॉल नहीं था, किसी नेता ने अपील नहीं करी थी, वो सोशल मीडिया की ताकत थी। हमने उसके बाद में राजस्थान में डेल्टा मेघवाल का केस देखा, उसके लिए भी लोग खड़े हुए। 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा रेजिस्टेंस का मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए हुआ, जिसमें 11 लोग शहीद हुए, हजारों लोग घायल हुए और हजारों लोगों को केस लगे, जेलों में रहे। वो पूरा आंदोलन, उसका कोई नेता अब तक नहीं पकड़ा गया, सीबीआई जांच भी करवा ले तो कौन नेता था, कहां से उठा, किसने उसका आह्वान किया था, किसने तारीख तय की कि 2 अप्रैल को ये करना है और कहां से कहां करना है, क्या करना है। लेकिन वो स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन बना, वो अचानक डीपी बदलने से बना, वो अचानक एक आह्वान से बना कि सड़कों पर उतरो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए, और वो ताकत सोशल मीडिया की ताकत थी। मुझे लगता है कि ये जमाना ज्ञान की राजनीति का जमाना है, और आज जिसके पास नॉलेज है वो आगे बढ़ रहा है। तो लंबे समय तक गुलामी हमारे लोगों की इसलिए रही कि उनको अक्षरों से, ज्ञान से, शब्दों से वंचित रखा गया, पढ़ने से वंचित रखा गया। लेकिन जब उनको ये मौका मिला कि वो पढ़ सकते थे तो उन्होंने पढ़ाई की, बड़े पदों पर पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए इस समाज में। और जब मीडिया, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं लेकिन मैं मनुस्ट्रीम मीडिया कहता हूं, वो मीडिया जब तक था कंट्रोल्ड, तब तक हमारी आवाज को वो कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि भारत में न्यूज रूम में डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे अध्ययन हुए हैं, CSDS ने वो अध्ययन किया, जिसमें ये पाया गया कि पूरे भारत में एक भी दलित और एक भी आदिवासी किसी भी मीडिया हाउस का मालिक नहीं है, संपादक नहीं है, एंकर नहीं है, और जहाँ आपकी न्यूज बनती है वो शीर्षक बनाने वाले लोगों में भी हमारे लोग नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो उस पर नियंत्रण नहीं था इस पूरे मनोधारा का, तो वहां हमारे लोग भले ही वो नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था कि कैसे इसका उपयोग करना है, लेकिन जब उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन आया, जब वो फेसबुक पर आए, ट्विटर पर आए, इंस्टा पर आए, उस दिन उन्होंने बगावत कर, उन्होंने कहा तुम अपना जो मीडिया है जो तुम्हारे कंट्रोल में वो तुम्हारे पास रखो, हम नहीं पढ़ते तुम्हारा अखबार, हम नहीं देखते तुम्हारा टीवी। तो हमारा व्यक्ति भले ही गलत शब्द लिख रहा है, उसे मालूम नहीं की बड़ी लिखनी की छोटी लिखनी है, लेकिन उसने लिखना शुरू किया। उसे पता नहीं था कि एंकरिंग क्या करनी है, पर उसने कोई अंदाज तो बनाया और एंकरिंग करी, एक वीडियो बनाया, अपलोड किया, अपनी पीड़ाओं का ही किया, अपनी वंचनाओं का ही किया, और उन्होंने ध्वस्त कर दिया सारे स्थापित पारंपरिक मीडिया को। और पिछले 5 सालों में जितने बड़े आंदोलन इस देश में दलितों के रेजिस्टेंस के मूवमेंट हुए हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया की देन है। वो किसी संगठन की वजह से नहीं है, किसी पॉलिटिकल नेता की वजह से नहीं है, किसी किसी की वजह से नहीं है, ये इस पर ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जो वर्चस्व वाला समाज है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो उस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इसको इसको सिकोड़ा जाए। क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये जो चेतना हमने 50-60 साल तक नहीं आने दी, ये 5-7 साल में आ गई, और ये ही जारी रहा तो ये 10 साल में तो पूरा कुछ बदल ही देंगे।
हाँ, क्योंकि राजस्थान में जैसे आपको बताइए कि बाबा साहेब के पोर्ट्रेट उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन रिसेंटली मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट्स भी देखे। इनफैक्ट गाँव में शादियों में भी लोग बाबा साहेब का पोर्ट्रेट लगाने लगे हैं। शायद बहुत छोटी शुरुआत हो, लेकिन एटलीस्ट देखने को तो मिल रही है।
आप शादी के कार्ड देखिए, कार्ड बदल गए हैं, शादी के तरीके बदल गए हैं। जो वर वधू को बिठा करके जो आशीर्वाद समारोह करते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड देखिए आप, बुद्ध नजर आते हैं, कबीर फुले नजर आते हैं, अंबेडकर नजर आते हैं। और छोटे छोटे गांवों में नीला झंडा और जो पंचशील का झंडा है वो नजर आता है। मुझे आजकल बस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे पीछे से किसी की भी आवाज़ सुनाई देती है, जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर, और गर्व के साथ, डर के नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं झिझक है, मतलब बहुत एकदम अधिकार के साथ। तो ये जो साधिकार, ये सब जो चीज़ें हो रही है और वो जो झंडा लग रहा है, छोटे छोटे गांव में बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब की स्टेचू, बुद्धम पुस्तकालय, तथागत पुस्तकालय, अंबेडकर पुस्तकालय, सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय, क्रांति के मुहाने पर खड़ा है समाज। और कितना ही दवाई है, आपने दूसरा से जो सवाल किया कि कितना आशा नजर आती है, मैं सोचता हूं कि हम ऐसे समय में हैं जब शोषणकारी ताकतें, विभेदकारी ताकतें अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं कि हमको गुलाम बनाए रखेंगे, और हमारे लोगों ने ठान लिया है कि जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम संविधान के जो चार वादे हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, उन वादों की को हकीकत में उतारना चाहते हैं, उन सपनों को देखना चाहते हैं कि वो साकार हुए कि नहीं हुए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर दलित, हर आदिवासी युवा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये कहीं पानी की मटकी का मामला मात्र नहीं है, या कहीं भेदभाव, या कहीं छुआछूत, या कहीं खेत या रास्ते की लड़ाई को हम अलग अलग नहीं देखते हैं। मैं मानता हूं कि एक बड़ा जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, जहां वो तमाम तरह की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, उस गुलामी से बाहर निकलने की छटपटाहट आपको हर दलित युवा के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर आती है। वो चाहे कितना ही किसी जगह पे पहुंच गया हो, वो मुझे मेरे समुदाय के IAS में नजर आती है, IPS में नजर आती है, वो नरेगा के मजदूर में नजर आती है, वो किसी प्रोफेशनल में नजर आती है, इंजीनियर, डॉक्टर में नजर आती है, एक टीचर में नजर आती है, एक जो मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट है उसमें नजर आती है, एक सामान्य से सामान्य छात्र में नजर आती है। तो ये जो छटपटाहट है ये बहुत उम्मीद जगाती है। और हमारे तो तमाम, हम तो इसमें ही अनुराग जी उम्मीद रखते हैं कि जो देवासुर संग्राम हुआ समुद्र मंथन का, और जिसमें जिनके पास रिसोर्स चले गए, जिन्होंने अमृत कब्जा लिया, वो देवता हो गए, और जिनको रिसोर्स लेस कर दिया, उनको आपने दानव बना के, असुर बना के, फिर बाद में कभी चांडाल कहा, कभी स्वपच कहा, कभी कुछ और कहा, छूत कहा, और अब फिर हरिजन कहा, फिर कुछ और कहा, दलित, बहुजन, अनुसूचित, इनके पूरी लड़ाई को आप देखेंगे तो 5000 साल का एक ज्ञात इतिहास है, जहां संघर्ष कर रहे हैं। ब्राह्मण धारा के खिलाफ एक श्रमण की पूरी धारा है, सगुण की, निर्गुण की एक पूरी धारा है, निराकार की पूरी धारा है। तो हमारा संघर्ष इतना पुराना है, और इतना पुराने संघर्ष में अगर हम डरे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, तो अब कैसे रुक सकते हैं? अब तो हमारे पास उम्मीद की लौ दिख रही है। लोगों ने तब भी लड़ाई लड़ी जब उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर अंबेडकर अकेले लड़ रहे थे, आज तो डॉक्टर अम्बेडकर के लाखों अनुयायी हैं जो देश और दुनिया में फैले हुए हैं और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था को बदलना चाहिए। ये स्थिति हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे लोगों की आंखों के जो आंसू हैं वो नहीं रहने चाहिए। हमारा जो ये जो संसाधन विहीनता है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे या गरिमाहीनता को स्वीकार नहीं करेंगे।
एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टीज ने दलितों को पूरी तरह से क्या फेल किया है और क्या आपको लगता है कि किसी तीसरे मोर्चे की जरूरत है जो कि पॉलिटिकली काउंटर करे इन दोनों पार्टीज को भी और दलितों को इस ऑपरेशन के दलदल से निकालने में सहायता करे।
मेरा ये कहना है कि हम बहुत ज्यादा राजनीतिक बदलाव से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव नहीं आएगा तब तक राजनीतिक बदलाव क्षणिक होता है। चार बार बहन मायावती जी ने सरकार बनाई है और अच्छे से सरकार चलाई, मैं ये उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने प्रशासन कैसे होता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे होता है वो करके दिखाया। लेकिन अब धरातल पर देखेंगे कि वहाँ का दलित भी उन्हीं पीड़ाओं से जूझ रहा है जितना राजस्थान का, जो एक भी बार सरकार नहीं बना पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब राज तो बदला, समाज नहीं बदला, और समाज जब तक नहीं बदलेगा बदलाव स्थायी नहीं होगा। आप कांग्रेस को लाएं, बीजेपी को लाएं, थर्ड फ्रंट को ले आए, फोर्थ फ्रंट को ले आए और कोई पांचवा चराग जला ले, लेकिन ये तात्कालिक उपाय है। कहीं भीतर गहरे में जख्म है, आप चमड़ी के ऊपर मलहम लगाएंगे उससे काम चलने वाला नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक बदलाव भी हो, दलित अपना अपनी ताकत खड़ी करें, अपना दल बनाएं, लेकिन बहुत सारे दल नहीं बनाएं जैसे अभी बना रखे हैं। ऐसे ऐसे नाम और इतने दल हैं कि एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं है। जहां भी वो रहें, जिस भी पार्टी में रहें, मजबूती के साथ अपने लोगों के लिए काम करें जैसे अन्य लोग करते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव, जो एक्चुअल बदलाव है, जो धरातल का बदलाव है, वो लाने की दिशा में काम करें, जो डॉक्टर अंबेडकर ने अंततः किया। आखिर में उन्होंने बुद्धिज्म का रास्ता लिया। तो जब तक आपका कल्चरली बदलाव नहीं होगा तब तक आप जय भीम तो कहेंगे, कार्ड में भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम छपवा देंगे, लेकिन दूल्हा बनेंगे तो माथे पे तुर्रा लगाएंगे और हाथ में कटार लेंगे और शेरवानी पहनेंगे और फेरे फिरेंगे और सप्तपदी से आप शादियां करेंगे, क्योंकि आपके पास कल्चर नहीं। तो आप स्वतंत्र तो होना चाहते हैं लेकिन कल्चर अपना मालिकों का रखना चाहते हैं। तो जब तक आप सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव नहीं करते हैं तब तक समाज में ज्यादा बड़ा बदलाव होगा नहीं, राजनीतिक बदलाव क्षणिक है।
सर थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना समय देने के लिए।
बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
सो दिस वॉज पॉडकास्ट नंबर 55। इफ यू लाइक द पॉडकास्ट देन प्लीज डू सपोर्ट इट ऑन पेट्रियन, बाय मी अ कॉफी, इंस्टा मोजो और पेपाल। ऑल द लिंक्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट।